अध्याय दो श्लोक संख्या 70 2.70।
आपूर्णामचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी।
अनुवाद। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो।
आगे का श्लोक आज दो श्लोक करेंगे।
विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति।
भाषांतर। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, किसके समान इच्छाएं रहती हैं? ये निकाल ले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरा आवाज आएगा सब? थोड़ा आगे आइए। तो जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो निरंतर प्रवाह है विचारों का, वो किसके समान है? समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान, और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। जो इस प्रकार के विचारों के प्रवाह से प्रभावित नहीं होता। विचारों के अनेक प्रवाह होते हैं, है कि नहीं? विचार एक होता है मन में? अनेक होते हैं। एक ही क्षण, एक ही समय अनेक विचार होते हैं। कभी खाने पीने का विचार होता है, कभी कभी बाहर जाने का, कभी एक ही क्षण में सारे विचार होते हैं। अब खाने का विचार कहे तो फिर केवल खाने का विचार नहीं होता है, क्या खाने का, कैसे खाने का, किसके साथ खाने का, कहीं जाने का विचार है तो क्यों जाना है, कैसे जाना है, किसको मिलना है, तो ऐसे अनेक विचार, विचारों का प्रवाह कैसे, जैसे अनेक नदियां होती है और सारी की सारी नदियां कहाँ मिलती है, समुद्र को मिलती है, और सारी नदियां अलग अलग प्रकार से कुछ कुछ बहा के ले आती हैं, और फिर भी समुद्र क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है और फिर भी स्थिर रहता है, अचल रहता है नहीं, स्थिर रहता है। कभी कभी उसको क्रोध दिखाना पड़ता है क्योंकि क्योंकि क्या है, समुद्र की भी मर्यादा है, उसकी मर्यादाओं का हम उल्लंघन करते हैं मनुष्य प्राणी। जब मनुष्य प्राणी इस नैसर्गिक प्रकृति के मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा तो फिर वो अपना रोष तो दिखाएगा ना, कितना सहन करेगा कोई भी है? किसी का नाक वाक मुख सब बंद करके उसके ऊपर उसको मारेंगे है? नाक और मुख दबा दिया और ऊपर से उसको मारेंगे तो समुद्र क्या करेगा, चुपचाप बैठेगा, बड़ी जोर से रिएक्ट करेगा। सोचिए हमको किसी ने ऐसा पकड़ के ऊपर से मारना शुरू किया तो हम क्या करेंगे, पूरे शक्ति के साथ उसको प्रतिकार करेंगे उसका, है ना, पूरे शक्ति के साथ। ऐसे समुद्र के ऊपर घर बांध रहे, समुद्र को पीछे हटा रहे, उसके अंदर ड्रिल कर करके ऑयल निकाल रहे हैं, फिर भी सहन कर रहा है, सहन तो करता ही है समुद्र, कितना कितने वर्षों से समुद्र सहन कर रहा है। वैसे ही जो मनुष्य स्थिर रहता है वो क्या होता, कैसा होता है, वह भी अपने अनेक प्रकार के विचार रूपी नदियों का स्वीकार करते रहता है, फिर भी स्थिर रहता है और वही शांति प्राप्त कर सकता, दूसरा व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरों जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है वो क्या होता है, वह शांति नहीं प्राप्त कर सकता। वो क्या करता है, जितनी जो भी इच्छा निर्माण होगी मन में उसको संतुष्ट करना, जो इच्छा निर्माण हो उसको तुष्ट करना, जो इच्छा निर्माण हो उसको तुष्ट करना। अब इतनी सारी इच्छाएं निर्माण होती है और सभी को यदि तुष्ट करने में लग जाए तो जीवन तो अशांत होगा, शांति कहां से मिलेगी, क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि विचार कितने प्रकार के हैं, अनेकों प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं क्योंकि इस भौतिक संसार में हम पड़े हुए। तो इस श्लोक का सार क्या है, इस श्लोक का सार यह है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति ही शांति की पूर्णावस्था है। शांति अर्थात क्या, पूर्ण रूप से यदि हम शांति चाहते हैं तो उसका अर्थ क्या है, रूपा जी तात्पर्य में कहते हैं उसका अर्थ यह है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, यदि हम शांति चाहते हैं तो अर्थात हम क्या चाहते हैं, कृष्ण भक्ति चाहते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस चाहते हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस होना बहुत जरूरी है। और कृष्ण कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या है, कृष्ण भावना भावित का अर्थ क्या है, कृष्ण भक्ति का अर्थ क्या है, क्या अर्थात क्या, कैसे कैसे, हाँ और हाँ और अर्पण करना अर्थात क्या होता है, अर्थात प्रत्येक वस्तु जो है वो कृष्ण की समझना, प्रत्येक वस्तु। ये बैग किसका है, आपका है, कृष्ण का है प्रत्येक वस्तु, जो चश्मा पहने वो भी कृष्ण का है, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक वस्तु भगवान कृष्ण की समझना, प्रत्येक जो कुछ भी दिखता है संपूर्ण सब कुछ किसका समझना, कृष्ण का समझ लो, उसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। सर्वव्यापी, सब जगह सब कुछ जो है कृष्ण का है। जब सब कुछ कृष्ण का होगा तो फिर हमारा अधिकार नहीं चलेगा ना, है कि नहीं? तो इसी को भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम। याद नहीं किया श्लोक? सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति का फॉर्मूला इसमें बताया था हमने, वही भूल गए। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोकम महेश्वरम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति का फॉर्मूला है ये, है कि नहीं? तो भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर, सारे लोकों के एक ईश्वर कौन है? कृष्ण। इसलिए प्रत्येक वस्तु जो है कृष्ण की समझना, उससे हमको टेंशन नहीं आएगा। प्रत्येक वस्तु को हमने कृष्ण की समझे तो हमको कोई चिंता रहेगी? कुछ चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि प्रत्येक वस्तु तो कृष्ण की है। हमको क्या चिंता है? हमको क्या, कोई चिंता का विषय नहीं है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी बहुत अच्छे से समुद्र की, समुद्र का अर्थ समझाए हैं। जिस प्रकार नदियों का जल समुद्र में प्रवेश, जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती है, फिर भी क्या होता है? समुद्र स्थिर रहता है, अचल रहता है, उसके अंदर कोई अभिमान भी नहीं आता है, ना उसकी प्रतिष्ठा कम होती है। अभिमान कैसे नहीं आता है? कोई समुद्र को अभिमान आ सकता है कि देखिए मैं कितना भव्य दिव्य हूं, सारी नदियां मेरे में, सब कुछ मुझे ही मिल रहा है, है? सब कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है, सारे नदियों का, गंगा जमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी गोदावरी, सब कुछ, सारे नदियों का जल मुझे ही प्राप्त हो रहा है, मैं कम बड़ा हूं? बहुत बड़ा हूं। समुद्र को कभी अभिमान भी नहीं होता है, हाँ? और समुद्र की प्रतिष्ठा भी अचल रहती है, उनकी प्रतिष्ठा पे भी कोई आघात नहीं होता है कि क्या समुद्र, कैसा कैसा सारा कैसा कैसा जल समुद्र में आ जाता है, ऐसा भी नहीं होता है, अचल स्थिर रहता है, अभिमान भी नहीं आता है, और प्रतिष्ठा का, और प्रतिष्ठा कम भी नहीं होती है, लेकिन बड़ी विशेष बात है। ऐसे ही कृष्ण भक्त होते हैं, यदि उनको बहुत कुछ प्राप्त हो गया, सारे संसार का धन ऐश्वर्य सुख यदि उनको प्राप्त हो गया, फिर भी उनको अभिमान नहीं होता है। और मान लो किसी को अभिमान होता है तो क्या समझना चाहिए? तो समझना चाहिए कि ये कृष्ण को नहीं समझे है, ये भक्ति को नहीं समझे है, ये भगवत गीता को नहीं समझे है, यदि अभिमान आ जाता है ना। यहां पे क्या बताया है? समुद्र की तरह अचल, उनमें कोई अभिमान नहीं आता है, और ना ही उनकी प्रतिष्ठा कम होती है। अभिमान भी नहीं आता है और प्रतिष्ठा भी कम नहीं होती है। प्रतिष्ठा कम होती है कभी कोई भक्त की? मान लो कोई भक्त है और किसी भयंकर खराब व्यक्ति के पास, जो महाअधम पापी है, नराधम, ऐसे व्यक्ति के पास 2 मिनट बैठा और उसको ज्ञान की बात बताई, भगवत गीता के संदेश उपदेश बताए, प्रभुपाद जी के उपदेश बताए उस व्यक्ति को, भक्त ने थोड़ा साथ संग किया उसका, तो क्या वो भक्त की प्रतिष्ठा खत्म होगी, कम होगी? हाँ, ऐसा होगा नहीं? क्या होगा? हाँ हाँ, उलट समाज ये कहेगा कि कितना सीधा साधा भक्त है, जो दिखा उसको कृष्ण उपदेश करता है, कोई किसी प्रकार का भेद नहीं करता, कोई भी दिखे गरीब लाचार पापी अधम कोई भी हो, हाँ उसको भी दिव्य ज्ञान का उपदेश करता है, कितना अच्छा भक्त है। उल्टे प्रतिष्ठा तो बढ़ गई, कम हुई है। तो समुद्र के भांति यह भक्त होते हैं, हाँ इनके पास सब कुछ आता है, जैसे नदियों का सारा जल अर्थात सारा संपत्ति अनेक स्रोतों से उनके पास आ जाता है। उदाहरण है प्रभुपाद महाराज, समुद्र की तरह है, सारे संसार में प्रचार प्रसार किए। कैसे किए? सारे संसार के बड़े बड़े धनी लोगों ने उनको धन दिया, दान। उनके पास क्या था? कुछ नहीं था, परंतु सारी ये नदियां, धन रूपी नदियां मिलती गई उनको, इंग्लैंड अमेरिका जापान श्रीलंका सब जगह, रशिया ऑस्ट्रेलिया सब जगह इनको क्या हुआ, सब लोगों ने दान दिया। लेकिन उस दान को लेकर प्रभुपाद जी को कोई अभिमान हुआ? नहीं हुआ। उसका उपयोग उन्होंने स्वयं के लिए किया? समुद्र ये सब जल का उपयोग स्वयं के लिए करता है? नहीं करता है। वो क्या करता है? वो समुद्र में से क्या क्या खनिज, कितने मेटल्स निकलते हैं, कितना वायु निकलता है, कितना तेल निकलता है, कितने प्राणी उसमें रहते हैं, कितने प्राणी का जीवन उसके ऊपर है, जलचर प्राणी पूरे समुद्र में रहते हैं, तो अपने स्वयं के लिए क्या करता है? स्वयं के लिए कुछ नहीं करता है। प्रभुपाद महाराज ने क्या किया? सारे धन का उपयोग कृष्ण के लिए किया, है कि नहीं? संपूर्ण धन का उपयोग जो आया, वो संपूर्ण धन उन्होंने क्या किया? कृष्ण की सेवा में लगाया। कैसे? प्रचार और प्रसार करके। प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्होंने क्या किया? सब सारे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के नाम का और उनके उपदेशों का महिमा बताया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और विशेष यह बात रही प्रभुपाद महाराज की, इतना सब उन्होंने किया लेकिन कभी भी कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ये मंदिर श्रील प्रभुपाद का है, ऐसा कहीं लिखा? उन्होंने क्या नाम लिखा? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर प्रभुपाद कॉन्शियसनेस नहीं लिखा। क्या लिखा? कृष्ण कॉन्शियसनेस। ऐसा ये सोसाइटी का नाम रखा और मंदिरों के नाम रख क्या रखा? मंदिर लंदन का मंदिर है, क्या नाम रखा? पेरिस का मंदिर है, उसको क्या रखा? तो जहार श्री श्री राधा पेरिस ईश्वर, पेरिस के ईश्वर, ऐसे नाम प्रभुपाद जी ने रखे। कहीं पे भी अपना नाम नहीं रखा, कहीं पे भी वो धन अपने स्वयं के लिए उपयोग में नहीं लिया, सभी जगह वो हम नित्य कहते थे प्रभुपाद, क्या कहते थे? मैं सेवक, मैं पोस्टमैन हूं, ऐसे बोलते रूपा जी कहते थे, मैं पोस्टमैन हूँ, मेरे गुरु महाराज का और भगवान का उपदेश सभी जिनके नाम से पत्र आया है उन तक पहुँचाना ही मेरा काम है, सारे जीवों तक ये भगवान के नाम का संदेश और उपदेश पहुँचाना ही मेरा कार्य है, यही कहते थे प्रभुपाद महाराज नित्य। तो हम यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के युग में क्या हो रहा है, शास्त्र का तो बहुत अच्छा अध्ययन होता है, शास्त्र को तो बहुत अच्छी तरह समझा जाता है, और बहुत अच्छी तरह शास्त्र को समझ के अंत में उपदेश क्या देते हैं? मैं भगवान, ये सब कुछ जो है वो मेरे भोग के लिए है, भगवान ने ऐसे ही कहा ना, सब कुछ मेरे भोग के लिए। परंतु वो क्या भूल जाते हैं? श्री भगवान उवाच, ये श्री भगवान ने कहा, ये वो लोग भूल जाते हैं और क्या सोचते हैं, सब कुछ मेरे भोग के लिए। और जब इस प्रकार से सोचते हैं तो क्या हो जाता है, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है, बहुत बढ़ती है और बढ़ती रहती है आसुरी प्रवृत्ति। परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं वो नित्य क्या सोचते हैं? भक्त का लक्षण क्या है? कृष्णा कॉन्शियस भक्त, कृष्ण भक्त का अर्थ क्या है अभी तो बताए। हाँ, जो कुछ भी है सब कृष्ण का है। इदम न ममह, इदम कृष्णाय इदम न ममह, यह सब कृष्ण का है, यह सब मेरा नहीं है। उसकी जो इच्छा होगी वो मुझे देगा, उसको जो लगे ये मुझे देना है तो वो मुझे देगा, परंतु इदम न मम, ये सब मेरा नहीं है, यह सब कृष्ण का है। यही भाव प्रभुपाद जी का है। इसलिए प्रभुपाद जी एक सागर के समान है, भक्त है, शुद्ध भक्त है, परंतु अपने आप को महानता देखिए कि अपने आप को क्या कहते हैं, मैं सेवक हूं। यह भक्त की विशेषता होती है। इस श्लोक में फिर एक शब्द आता है, न काम कामी, आखिरी का शब्द है न काम कामी, कामनाओं को चाहने वाला अपनी का। प्रभुपाद जी ने ये सारे धन राशि का उपयोग कृष्ण की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किया। क्या किया? भगवान कृष्ण की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रभुपाद जी ने सारे धन का उपयोग किया। हम धन का उपयोग किस लिए करते हैं? अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करते हैं ना, है कि नहीं? निश्चित बात है, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हम धन का उपयोग करते हैं, परंतु बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती है। बढ़ता क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा है, मत्सर, क्रोध, ये सब बढ़ता है। क्योंकि अर्थ यह नहीं है कि आपको जो धन मिलता है सारा का सारा कृष्ण को दे दो, ऐसा नहीं है, परंतु अपनी प्रतिष्ठा यदि बढ़ानी है तो भौतिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के चक्कर में मत पड़िए, वो कभी बढ़ती नहीं है। वो भ्रम है, वो बढ़ती नहीं है, कभी ना कभी वो हमको ऐसा फंसा देती है कि जो प्रतिष्ठा थी वो भी डामाडोल हो जाता है। इसलिए प्रतिष्ठा यदि हमारी बढ़ाना चाहते हैं तो क्या बढ़ाना चाहिए? हम कितने अच्छे कृष्ण भक्त हैं, हम कृष्ण की कैसे अच्छे से अच्छे भक्ति कर सकते हैं, वो प्रतिष्ठा बढ़ाइए। है ना। तो यहाँ पे न काम काम, तो कामनाओं का न चाहने वाले, जो व्यक्ति कामनाओं को चाहते हैं वो भोगों को प्राप्त करते हैं। जैसे कामना है, इच्छाएं है, बहुत इच्छा है, कुछ इच्छा है तो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग इच्छाएं है। तो यदि इतनी स्ट्रांग इच्छाएं है तो मैं क्या करूंगा? मैं भोगों को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, है कि नहीं? और जब भोगों को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा तो क्या होगा? उन भोगों को प्राप्त करने के चक्र में अपनी शांति खो बैठूंगा, क्योंकि कुछ प्राप्त करना है, प्राप्त करना है। मन चल बिचल, चंचल, अचल, अचल नहीं चंचल, चंचल हो जाता है मन, क्योंकि मुझे ये चाहिए 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 चाहिए। जैसे छोटा बालक होता है, छोटा बच्चा बहुत अज्ञान रहता है, वो समझता है कोई खिलौने में मोटर कार, खेलने की मोटर कार है, वो खिलौने को प्राप्त करने के लिए कितना लालायित रहता है, कितना चंचल रहता है, अजीब बात, स्थिर नहीं रहता है, बिल्कुल स्थिर नहीं रहता है। और जैसे ही उसको वो दिख जाता है कैसे करता है? चाहिए 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 चाहिए, खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए। हाँ, और खिलौने को प्राप्त करने के लिए एकदम अस्थिर होता है, रोने लगता है सब कुछ। ऐसे ये जीवात्मा जब भौतिक प्रकृति के वस्तुओं को चाहता है या उसको चाहने की इच्छा करता है तो वो एक्चुअली खिलौने को प्राप्त करने की इच्छा करता है। और कभी कभी तो इच्छा इतनी प्रचंड होती है, जैसे छोटा बालक रोता है वैसे बड़े बड़े लोग हम देखते हैं, उदास हो जाते, हैरान हो जाते, सामने वाला उनके साथ क्या बात कर रहा है, कभी कभी वो भी उनको सुनाई नहीं देता है सामने बैठकर। क्यों? क्योंकि अंदर से वो इतनी भयंकर इच्छा हो गई खिलौने को प्राप्त कर। खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए। और जैसे बच्चे का होता है, कितने दिन बच्चा खेलता है खिलौने के साथ? 4 दिन 5 दिन बहुत हो गए, उसके पश्चात वो खिलौना दूसरा चाहिए, अभी नहीं चाहिए। ऐसे ही है, इच्छा थी गाड़ी लेने की, कार लेने की, और उसके लिए कितना कितना माथा पच्ची किया, कई पापड़ बेले, ये लोन ले, वो लोन ले, ये कर वो कर, 2-3-4 साल गाड़ी चलाई। अब क्या हो रहा है? अब दूसरी गाड़ी चाहिए या दूसरी कोई वस्तु, बड़ा बंगला चाहिए, अब क्या करेंगे? इसको फेंक दो। फिर वही स्थिति, कौन सी? बच्चे की जैसी। जब बच्चा दूसरा बैट देखता है, क्रिकेट का बैट बॉल, वो बोलता है अभी मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, रोने लगता है। क्यों भैया? अभी गाड़ी थी, गाड़ी में की रुचि खत्म हो गई, गाड़ी लेके मन समाधान नहीं हुआ, खिलौना नहीं, मन शांत नहीं। इसी प्रकार से यहां जो कहा है, कामना न काम कामी, अर्थात कामनाओं को चाहने वाला, ऐसे लोग होते हैं वो जो कामनाएं जन्म लेती उनके मन में, वो कामनाओं को ही चाहते हैं, वो चाहते ही है कि मन में कामनाएं होती रहे। और जब कामनाएं होती है तो उसके पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमते रहते, डोलते रहते हैं, है कि नहीं? और नहीं मिली तो रोते रहते हैं, रोते रहते अर्थात दुख प्रकट करते, उदासीन होते हैं। फिर कुछ कुछ लोग व्यसनी हो जाते हैं, कुछ कुछ लोग अल्कोहल पीते हैं, उसके आगे भी प्रॉब्लम्स, ऐसे अनेक प्रकार के व्यसन लग जाते हैं। कामनाओं को चाहते हैं, इसलिए मान लो कामना उत्पन्न हुई और हम उसको चाहते नहीं है तो क्या होगा? अब कामना तो सबके मन में उत्पन्न होती है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कामना उत्पन्न ही ना हो। कामना तो उत्पन्न होगी, भौतिक संसार है, कोई साधी साधारण बात नहीं है। भगवान की बाह्य शक्ति है, वो तो आएगी ही मन में। वैरागी नहीं हो सकते, कितना भी सोचे हम कि वैरागी हो जाएंगे और ये वैरागी नहीं होंगे। प्रभु जी, वैरागी होने की कोशिश मत कीजिए। कामनाएं आएगी, संसार में गए, मॉल में गए तो बहुत ही अच्छा डनलॉप और बेस्ट क्वालिटी का सोफा सेट लेने की इच्छा हुई, कामना हुई, और कामनाओं को हम भी चाहते हैं, चाहत भी है और कामना भी है, कामना के प्रति चाहत है, तो भोग होगा, भोगना पड़ेगा। क्या भोगोगे फिर? वो सोफा खरीद लोगे, कोई भी वस्तु देख ली, कामना हुई, खरीद ली, तो कामनाएं तो होगी और उसके प्रति प्रेम होने के कारण भोग भी मिलेगा, तो क्या करें? है कि नहीं? क्या करें बताइए? शास्त्र कहता है भुक्ति मुक्ति, हाँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। कौन कौन? भुक्ति, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। कौन कौन? सकल अशांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति, चार लोग ध्यान में रखिए। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो भुक्ति अर्थात जो इस प्रकार से कामनाओं से प्रेम करते हैं, जो इच्छाएं उत्पन्न होती है वो इच्छाओं से प्रेम करते हैं, और वो इच्छाओं से प्रेम करने के कारण भोग करने का प्रयास करते हैं। तो ये भोग को जो भोगते हैं, वो भोग को भोगने वाले अर्थात भुक्ति, दूसरे लोग क्या है? मुक्ति। दूसरे लोग होते हैं ना, मुक्ति चाहते हैं। प्रभु जी मुक्ति चाहिए, मुक्ति, मुक्ति मिलेगी आपका नाम लेने से हरे कृष्ण का, पूछते प्रश्न हमको, क्या मुक्ति मिलेगी? तो मुक्ति क्या है, मुक्ति का अर्थ क्या है? भौतिक दुखों से छुटकारा। भौतिक दुख सबसे बड़ा कौन सा है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। क्या इससे छुटकारा होगा मुक्ति मिलने से? हाँ, क्या इससे छुटकारा होगा? मुक्ति यदि मिल गई तो नहीं होगी तो फिर मुक्ति कैसे? वो उसको मुक्ति कैसे कहेंगे? हाँ, यदि जन्म मृत्यु ये सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा दुख यदि हमारे जीवन में कोई है तो वह जन्म और मृत्यु। अभी तो जन्म मिला, अच्छी बात है, मनुष्य बन गए, और उसमें भी अच्छी बात है कि आ जाते हैं सत्संग में, और उससे भी अच्छी बात है कि जप करते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि बड़ा ध्यान से और कृष्ण में मन लगा के जप करते हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा जन्म मिला। अब मृत्यु भी तो होगा ना। जन्म मिला है तो मृत्यु होगा। ठीक है, मृत्यु से हमको कोई भय नहीं है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, नैसर्गिक है, सभी के साथ होता है, अपने साथ भी होगा, क्या डरने का, उसमें कोई बड़ी बात। लेकिन डर कब नहीं होगा? जब मृत्यु से हमको कोई लाभ होगा तो, है ना। अब मृत्यु से मान लो कोई लाभ ही नहीं है तो भय रहेगा ना। अभी मृत्यु कैसा होगा और उसके बाद क्या होगा? हम चिंता करते हैं 2 साल बाद अगले साल क्या होगा, डिपॉजिट्स इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए, महंगा हो रहा है सब, महंगाई हो रही है, हमारा जीवन अच्छा, जीवन यापन अच्छा होना चाहिए, किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, अगले साल क्या होगा इस प्रकार से महंगाई बढ़ गई तो, ऐसे विचार करते हैं। 5 साल बाद क्या होगा, फिर बड़े बच्चे बड़े हो गए, फिर वो कैसे होगा, बच्चे क्या करेंगे, कैसे होगा, हमको दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा, हम सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे, चिंता है, प्रश्न सोचते रहते हैं। परंतु कभी ये सोचते हैं क्या कि मृत्यु यदि हो गया तो मृत्यु के पश्चात हम कैसे रहेंगे, क्या मिलेगा? अभी तो मनुष्य है, आगे जाके कुछ कुत्ता बिल्ली हो गए तो क्या होगा? हाँ, बड़ी डरने की बात है कि नहीं, दुख की बात है ना। इसीलिए तो कहते कि मृत्यु सबसे बड़ी दुख की बात है, और जन्म भी है, क्योंकि जन्म लेने से मृत्यु आती है। इसलिए जन्म भी और मृत्यु, तो मुक्ति कैसे है? यह ऐसे मुक्ति कुछ काम की नहीं है जो हमको फिर से जन्म देती है, क्योंकि अर्थ क्या है, फिर से जन्म लो, फिर से दुखी कष्टी रहो, इस संसार में उलझते रहो। हाँ, और पैर में भौरा लग गया ना, जैसे पैर में भौरा लगता है, भौरा समझते ना, रुकता ही नहीं, गोल 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 घूमते रहता है, वैसे इस संसार में आने के पश्चात आदमी घूमते ही रहता है, बैठ नहीं सकता है शांति से, ना बैठ सकता है ना सो सकता है। कलयुग में बैठने का प्रयास करेगा तो मन बहुत चंचल है, थोड़ी देर आधा एक आध घंटा भाई चलो सत्संग सुनते हैं, परंतु मन उसमें भी कई घर की बात दिलाएगा, अभी जाके कोई सब्जी बनाना है, कल के लिए क्या सब्जी बनाना है, कल के लिए बाजार में जाना है, कल का ऑफिस में क्या करना है, ऑफिस का बॉस का टेंशन है, ऐसे सब कुछ सोचता है, कब? जब सत्संग में बैठा है। तो इस प्रकार से मन भी हमको चैन से नहीं रहने देता। तो फिर भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, तो ये मुक्ति का उपयोग क्या है? तो मुक्ति से भी बढ़कर क्या है? हाँ, मुक्ति से बढ़कर है भक्ति। हाँ, और भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति मत अर्थात, बुधवार के क्लास को वो सब तो आए थे, नहीं आए थे, कोई नहीं आया था बुधवार के क्लास में, कोई नहीं आया। भक्ति का अर्थ क्या है? कृष्ण को केंद्र में कैसे रखते हैं? यत करोषि यदश्नासि, हम तो जानते हैं कृष्ण को केंद्र में रखते हुए सब कार्य करना, लेकिन कैसे? कल बताया, बुधवार को बताया ना कैसे। ऐसे तो पूरे टाइम कर सकते हैं, पूरा टाइम यदि कृष्ण का काम करते हो, कृष्ण का स्मरण करते रहो, बहुत अच्छी बात, शुरुआत मध्य और अंत अर्थात फुल टाइम। है ना, पूर्ण समय भगवान के नाम का चिंतन करते रहो, कृष्ण कॉन्शियस। तो भक्ति जो है, भक्ति सर्वोत्तम है, क्योंकि भक्ति में भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम प्राप्त होने से क्या होता है? मुक्ति है व्यक्ति, जीवात्मा मुक्त हो गया, दुखों से मुक्त हो गया, कोई जगत में चला गया, ब्रह्मलोक में गया, और फिर जीवात्मा को कोई इच्छा हो गई और फिर जीवात्मा भौतिक संसार में, इसका अर्थ होता है मुक्ति। अब भक्ति अर्थात प्रेम, तो ये जो प्रेम है ये मुक्ति से श्रेष्ठ क्यों है, जरा ये बताइए हमको, अर्थात भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ क्यों है, कैसे? हाँ, परफेक्ट आंसर। मुक्ति से भक्ति क्यों श्रेष्ठ होती है? क्योंकि वहां कृष्ण के साथ हमारा नित्य आदान प्रदान रहता है भक्ति में। भक्ति अर्थात प्रेम, प्रेम का अर्थ कोई हमारा प्रेमी व्यक्ति है तो प्रेमी व्यक्ति इसलिए क्योंकि हमारा नित्य आदान प्रदान है उसके साथ, है कि नहीं? रोज का संबंध है इसीलिए तो प्रेमी है ना, है कि नहीं? हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, तो हमारा प्रेम है इसीलिए तो संबंध है, और उसी को भक्ति कहते हैं। अब मुक्ति में आप रोज भगवान के साथ चर्चा नहीं कर, डिस्कस नहीं कर सकते, भगवान के साथ बैठे अपने प्रेमी हैं, फ्रेंड के जैसा, दोस्त मित्र के जैसा, सखा के जैसा भगवान के साथ चर्चा करो, और वो भी फ्रेंड के जैसा अपने गले में हाथ डाल के, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है, चलो ऐसा ऐसी ऐसे बात, उसको भक्ति कहते हैं। मुक्ति मिल गई तो किससे बात करेंगे, आप तो ब्रह्म हो गए, ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता है, अब क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे, मुक्त हो के परेशान हो जाएंगे, फिर इस भौतिक संसार के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे, कहेंगे नहीं अब कोई रूप को देखते हैं चलो, और फिर इस संसार में आके गिरेंगे, पता नहीं क्या बनेंगे। परंतु भक्ति इसलिए श्रेष्ठ है, भक्ति में नित्य हम भगवान के साथ संबंध बनाए रहते हैं, नित्य भगवान के संबंध में, भगवान के संपर्क में रहते हैं, भगवान का संग हमको नित्य मिलता है, इसलिए भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ है। मराठी में एक भजन है, मैंने कई बार यहाँ पे बताया भगवान वो भजन, भक्ति वाचुनी मुक्ति ची मज जड़ली रे व्याधी, विठला नीच खरा अपराधी। संत कहते हैं बिना भक्ति के मुझे मुक्ति चाहिए भगवान, हे विठल आपकी भक्ति के बिना मुझे मुक्ति चाहिए। भक्ति का कोई नाम लेता था, अरे मेडिटेशन है, अच्छा मेडिटेशन, चलो बैठते हैं मेडिटेशन में। भाई क्या है मेडिटेशन में, शरीर मन और बुद्धि, इसके आगे प्राण है, उसके आगे आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है, और सबसे बड़ा प्रेम है। मेडिटेशन में कभी प्रेम मिलता है? मेडिटेशन एक स्टेप है, एक स्टेज है, शरीर के लिए जरूर है, अच्छा है, मन के लिए बहुत जरूरी है, अच्छा है, लेकिन उसी को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए, उसके और आगे। अर्थात मुक्ति प्राप्त करने वाले लोग क्या करते हैं, मुक्ति प्राप्त करने वाले केवल ध्यान योगा करके वहां रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। परंतु ये संत कहते हैं कि ये भक्ति किए बिना मुझे मुक्ति, ऐसे टेक्निक के द्वारा मुक्ति चाहिए, हे विठला मैं ही अपराधी हूं, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, आपका प्रेम आपकी भक्ति मैं नहीं प्राप्त करना चाहता और सीधे मुक्ति चाहता हूं, मेरे से बड़ा कोई अधम होगा। तो इस प्रकार से भुक्ति मुक्ति सिद्धि, हाँ गायब सब। ऐसा यदि हमने किया करके कुछ हाथ में, ये लो सोने की रिंग, पूरी स्कूल भर जाएगी नहीं। अभी कितने हैं, 50 लोग, और किया तो पूरा स्कूल भर जाएगा। सिद्धि, सिद्धि अर्थात भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करने की लालसा, पूर्ण करने की लालसा, सिद्धि, ये करो वो करो तो ये मिलेगा, ये करो वो करो तो वो मिलेगा, वो करो फलाना, रोज हर गुरुवार को हर बुधवार को एक पैर पे खड़े होके ओम रेम श्रेम श्रेम करो तो आपको ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, ऐसे सिद्धि, हाँ परंतु सिद्धि भी इसलिए होती है क्योंकि भौतिक संसार के वस्तुओं को हमको प्राप्त करना है। सिद्धि नहीं चाहिए क्योंकि उसमें भी प्रेम मिलता है क्या? भगवान भगवान के गले में हाथ डाल के बात कर सकते हैं? भगवान को फ्रेंड बुला सकते हैं, मित्र दोस्त, हे सखा, हे कृष्ण आओ बैठो जरा थोड़ी बातचीत करते हैं, क्या सिद्धि सिद्ध लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और कामी, अब कामी की क्या चर्चा करें, कामी की क्या चर्चा करें। कामी अर्थात जिसके सर में पूरी तरह से काम ही काम भरा पड़ा हुआ है, भयंकर लोभी, पूरी तरह से भौतिकता में आसक्त और लिप्त। हमने एक बार आपको एक उदाहरण बताया था, एक हमारे मित्र है परिचित, उनके पिताजी, अब वो मित्र जो है वो तो ठीक ठीक है, उनके पिताजी बड़े अच्छे बिजनेस करते हैं। तो कभी हमने उनको, उनके मित्र को, उनको हमारे मित्र को कहा था कि आप चलो यात्रा में चलो, हाँ हमारे साथ यात्राओं में चलो। बोले प्रभु जी ऐसा है, अभी मेरे तो थोड़े बहुत काम आ गए हैं यात्रा के समय, मैं तो नहीं आ सकता, हमारे पिताजी को ले जाओ। अब हमने सोचा ठीक बात है, इनके पिताजी को ले चलते, उनके पिताजी अर्थात बिजनेसमैन, अच्छे वर्षों से बिजनेस करते आ रहे हैं। हम उनको त्र्यंबकेश्वर, नासिक, ऐसे सब जगह लेके गए, महाराष्ट्र यात्रा, सारे तीर्थ क्षेत्र सब जगह वो घूमे हमारे साथ, लेकिन अपने ही ढंग से। हम उनको देख रहे थे, हमारा ध्यान था उन पे, हमको ऐसे लगा कि अभी इनमें अभी उतना प्रेम का वो जो स्रोत होना चाहिए, जो फाउंटेन, फाउंटेन को क्या कहते हैं हिंदी में, प्रेम का वो फव्वारा अभी तक हमको नहीं दिखा। हमने सोचा कि इनको प्रकृति के विषय में ज्यादा ही आसक्ति है, कुछ प्रकृति के विषय में जरा दुख यदि इनको बताए तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो जब त्र्यंबकेश्वर आए तो योगा योग ऐसा था कि वहां पे एक चिता जल रही थी नदी के किनारे, और हम वहां पे थे, शिव मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, और चिता थी। तो हमने को, हमने भी मौके को परखते हुए वो प्रभु जी को पास में बुलाया, और हमने बोला देखो प्रभु जी ऐसे ही सबको एक दिन जलना पड़ता है, ये शरीर ऐसा ही रह जाता है। अब वहां पे बहुत सारी चिताएं थी, बहुत सारे, उन्होंने बड़े गंभीरता से समझा हमारा पॉइंट, बड़े खुश हो गए, अंदर से सीरियसली लिया उन्होंने, वाह बिल्कुल सही बात है, ये कितना भौतिक दुख है, एक दिन तो जाना ही पड़ता है, ऐसे जलना पड़ता है ये सब ऐसे। और सब होना, हमारा सब बोलने के पश्चात हमने बोला कि प्रभु जी अभी आप जप माला कीजिए, रोज एक माला जप कीजिए ऐसे। नहीं नहीं मैं करूंगा प्रभु जी, वो सब ठीक है करूंगा। मेरे मन में कुछ अच्छा विचार आया, प्रभु जी आपके साथ रह के, ऐसा कहते हैं ना कि भक्तों के साथ रहो तो कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है, तो मेरे मन में एक बहुत अच्छा फायदे का विचार आया। बोले हमने बोला क्या विचार आया प्रभु जी जरा बताइए, हमने सोचा कहेंगे कि कल से हम एक माला जप करेंगे। वो कहे प्रभु जी अभी हम आधा पौना घंटा इस जगह पे बैठे हैं, वो आधे पौने घंटे में चार पांच चिताएं जल गई यहाँ पे, कितना लकड़ा लगता होगा यहाँ पे। अभी मैं क्या सोच रहा हूं कि यहाँ इसके स्मशान भूमि के बाहर थोड़ा तो लकड़े का यदि बिजनेस किया जाए तो रोज का कितना लकड़े का बिजनेस होगा, कितना धन कमाऊंगा। देखिए भक्तों के साथ रह के ऐसा लाभ होता है। तो ये होते हैं कामी, वो कभी भी प्रेम, भगवत प्रेम, आत्मज्ञान, ये सारे विषयों पे उनको कोई रुचि नहीं होती है। उस विषय में भाव, आध्यात्मिक विषय की चर्चा भी चल रही हो तो उसमें भी वो भौतिकता को ढूंढते हैं। उसमें भी जैसे कोई पूछा हमको आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते, हमने बोला कितना, बोले 16, हमने बोला 16 माला, अच्छा कितना टाइम लगता है, डेढ़ पौने दो घंटा लगता है, इतनी देर में यदि कोई आप पार्ट टाइम जॉब कर ले तो आपको महीने का 2-4 हजार रुपया मिल जाए उसमें भी वो भौतिक इस टाइम में आप कोई कर्म करे तो आपको 2-4 हजार रुपया महीने का मिल जाए तो सोच, हमने बोला फिर आगे का जन्म कुत्ते का मिल गया तो फिर क्या करेंगे, 2-4 हजार रुपया तो जमा करेंगे, फिर आगे कुत्ता बन गए तो क्या करेंगे, आपके ऊपर भोकेंगे कि हमको ऐसी आइडिया क्यों दिया कामी, इसको कहते हैं कामी। इसलिए सकल अशांत, ये सब अशांत रहते हैं, क्यों, क्योंकि कामनाओं से इनकी प्रीति रहती है, मन में कामना उत्पन्न हुई वो कामना को चाहते हैं, उस कामना से प्रेम करते हैं, परंतु कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम रहते हैं। वो भी निष्काम क्यों होते हैं, क्योंकि उनको सबसे बड़ा काम होता है कौन सा, कृष्ण की सेवा। इसलिए भौतिक संसार के प्रति वो जिस प्रकार से ये चाहते हैं कामनाओं को, वैसे कृष्ण भक्त चाहते नहीं है, क्योंकि वो भगवान को चाहते, इसलिए भगवान उनको जो दे देते हैं, भगवान उनको जो दे देते हैं उसी को वो चाहते हैं, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। इसलिए ये मंत्र, ये श्लोक अच्छे से स्मरण रखिए, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, यह श्लोक फिक्स कीजिए माइंड। 71 विहाय कामान सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। सब लोग उठ जाएंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस श्लोक में भगवान बता रहे शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है, और बिना शांति के सुख नहीं मिलता है। इसके पहले देखा है ना, सुख और शांति एक साथ होते, शांति नहीं है तो सुख भी नहीं है, है ना। तो यदि शांति चाहते हैं तो शांति के लिए पहले क्या कहा है, इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को त्यागना होता है, और जो इच्छा रहित रहता है, कितनी बड़ी तपस्या है, कितनी बड़ी तपस्या है। 54 में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे थे, चार प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने, उन सारे प्रश्नों का संक्षिप्त में भगवान ने उत्तर दे दिया इस श्लोक में सारे प्रश्नों का सार कि इच्छाओं को त्याग दो और इच्छा रहित रहो। विहाय कामान्यः, जिसने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को त्यागा है, बड़ी कठिन बात है। चैतन्य भागवतम में वर्णन आता है, खोल बेचा श्रीधर, नाम सुना है, चैतन्य भागवत पढ़ा है किसी ने, भक्त खोल बेचा श्रीधर, बहुत ही शुद्ध भक्त चैतन्य महाप्रभु के, भगवान चैतन्य के, वो क्या करते थे, भगवान को रोज एक केले का पत्ता, उनकी परिस्थिति ठीक नहीं थी, वो केले के पत्ते डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बेचते थे, परंतु भगवान के लिए वो वैसे ही फ्री दे देते थे केले का पत्ता, एकदम गरीब, परंतु भगवान चैतन्य को, चैतन्य महाप्रभु को फ्री देते थे, और कई बार भगवान के लिए भोग बनाते थे और पत्र में ले जाके भगवान को बड़े प्रेम से खिलाते, बड़े प्रेम से, नित्य सेवा प्रेम भगवान से, आदान प्रदान प्रेम का, भक्ति। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला की, चैतन्य महाप्रभु ईश्वर भाव में आ गए, चैतन्य महाप्रभु भक्त भाव में रहते हैं नित्य, परंतु वो भगवान भी है। यदि वो चाहते तब वो ईश्वर भाव में भी आ जाते हैं, अपना ईश्वर का भगवान का रूप दिखा देते। कई भक्तों ने वो भगवान का रूप का दर्शन किया। चैतन्य महाप्रभु खोल बेचा श्रीधर के भक्ति से इतने प्रसन्न हुए, उनके प्रेम से इतने प्रसन्न हुए कि एक बार ईश्वर आवेश भगवत भाव में आए, भगवान के रूप में आए और खोल बेचा श्रीधर को कहे, श्रीधर तुम यहां पे आओ मेरे पास, देखो और तुम मांगो तुमको क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए। सारे प्रकार की सिद्धियों को मैं तुम्हारी दासी बना देता हूं, जितनी भी सिद्धियां हैं सारे सिद्धियों को मैं तुम्हारी दासी बना देता हूं। इतना ही नहीं, मैं तुमको एक राजा महाराज्य देता हूं, एक राजा बना देता हूं। जाओ श्रीधर, मांगो मांगो श्रीधर क्या चाहिए तुमको, मैं इस राज्य का, बड़े राज्य का, महाराज्य का राजा बना देता हूं। सारी दिव्य शक्तियां तुमको दे देता हूं, सारी सिद्धियां तुम्हारी दासी बनकर रह जाएगी। मांगो इसमें से क्या चाहिए तुमको, मांगो। ऐसे भगवान श्रीधर को कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो खोल बेचार श्रीधर भक्त है, वो क्या कहते हैं, हे प्रभो, हे भगवान, अब और कितना बहकाना चाहते हो, कब तक मुझे बहकाते रहोगे, कब तक मुझे फंसाते रहोगे, कब तक बहकाते रहोगे, कितना बहकाना चाहते हो। और ऊपर हाथ करके जोर से बोलने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यदि देना ही है आपको तो मुझे ये सब मत दीजिए, बल्कि इन सब की यदि इच्छा मेरे मन में आ जाए, यदि कामना मेरे मन में आ जाए, कोई लोलुपता मेरे मन में आ जाए, उसको तुरंत भस्म कर दीजिए। आप भगवान हैं, आप मुझे ऐसा बहकाइए मत। आपको देना ही है तो क्या देना है, आप मुझे आपका प्रेम दीजिए, और एक वर तो आप मुझे अवश्य दीजिए कि कोई भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, कोई भी जीवन में, मुझे कोई भी जीवन मिल जाए, कोई भी योनि मुझे मिल जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु मेरे अंदर, मुझ में आपके नाम के प्रति रुचि कभी कम न हो, आपके नाम के प्रति मेरा प्रेम नित्य बढ़ता रहे। देना है तो ये दे दीजिए भगवान, ये सब मुझे बहकाइए मत। ये तो इच्छा भी नहीं मुझे चाहिए, यदि गलती से इच्छा भी हो गई तो इच्छा को आप भस्म कर दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहे, भगवत आवेश में थे, भगवान के रूप में थे, तुरंत चैतन्य महाप्रभु इतना शुद्ध भाव देख के चैतन्य महाप्रभु की आंखों में आंसू आए और कहे, श्रीधर तुम वास्तव में शुद्ध भक्त हो, तुम्हारी इतनी अच्छी भक्ति है कि मैं अभी तुमको, मैं यह प्रेमा भक्ति प्रदान करता हूं। और भगवान, साक्षात भगवान ने उनको आलिंगन दिया, श्रीधर खोल बेचा श्रीधर। तो देखिए, यदि वो इच्छा करते कि अरे बाप राजा तुरंत, हाँ बना दीजिए, यही सिंहासन डाल दीजिए, हाँ साधारण जीवात्मा होता और भगवान, मान लो यहाँ पे भगवान आके बैठ गए, पूछे हम सबको क्या चाहिए, एक एक मांगो, हाँ मांगो क्या चाहिए, तो क्या मांगे, हाँ नक्की, देखो विचार कीजिए। कॉन्फिडेंस, जो भी मांगना है कॉन्फिडेंस से मांगिए, विश्वास से मांगिए, श्रद्धा से मांगिए, क्या मांगे, कुछ भी नहीं मांगेंगे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे तो कुछ भी नहीं मांगेंगे। भगवान कहेंगे क्यों आ गया मैं, किसी दूसरी जगह जाता कुछ तो मांगते, क्या मांगेंगे। क्यों? उससे क्या होगा? भगवान के नाम में हमारी रुचि बढ़ गई तो होगा क्या? बहुत लोग तो बोलते सरदर्द होता है। क्यों? हाँ, उससे क्या होता है? उससे भौतिक इच्छाएं, भौतिक कामनाएं कम होते जाती है, कम होते जाती है, क्योंकि हायर टेस्ट। इसके पहले कहे थे ना, रसगुल्ला मिल गया तो अभी वो संतरा गोली खाएंगे? अभी तक संतरा गोली खाते थे, अच्छी लगती थी, पर कोई आया और हमको रसगुल्ला दे दिया। अब हमको रसगुल्ला मिल रहा है और कोई आके फिर कह के भाई ये संतरा गोली लो तो लोगे? पेपरमिंट की गोली, क्योंकि ऊंचा टेस्ट मिल गया, हायर टेस्ट। नाम रुचि जो है, नाम जो है उच्च, सर्वोच्च स्तर है, और उसमें यदि इंटरेस्ट आ गया, उसमें टेस्ट आ गई, उसकी अच्छी टेस्ट लगने लगी, एकदम स्वादिष्ट, तो ये जो निचली वाली टेस्ट है, ये सारी टेस्ट जो है, सारी रुचि अपने आप कम कम होती जाएगी। हमको कम करने की आवश्यकता है। देखिए, हमारे बहुत सारे विचार है, यहाँ पे कहा गया है विचारों से रहित हो जाओ, इच्छाओं से रहित हो जाओ। हम इच्छाओं से रहित नहीं हो सकते। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहे, बहुत सुंदर उदाहरण दिए प्रभुपाद जी, हम इच्छाओं से ये नहीं हो सकते हैं। इच्छाएं हम कम नहीं कर सकते, विरक्त नहीं हो सकते, परंतु हम एक उच्च कोटि की इच्छा कर सकते हैं, और उस इच्छा को पकड़े रहे तो बाकी जो निचले स्तर की इच्छा है वो अपने आप कम हो जाएगी। हमको कम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कृष्ण पे छोड़ दो, कृष्ण करते रहेंगे। देखो, हमको क्या करना है, हमको कृष्ण को पकड़ना है। कृष्ण को पकड़ लो, फिर आगे का क्या काम करना है, कृष्ण जाने और काम जाने, अपने को क्या करना है। हम उलझते रहेंगे, ये भौतिक संसार से लड़ाई लड़ेंगे, वैराग्य और इच्छा और ये और वो, हम फंस जाएंगे प्रभु जी। हम जिस माया देवी के साथ युद्ध करने के लिए जाएंगे उसी से आकृष्ट हो जाएंगे, जिससे दूर रहना चाहेंगे उसी के चंगुल में फंस जाएंगे। परंतु हम कृष्ण पे निर्भर हो गए, कृष्ण भक्ति करने लगे, तो वो काम किस, कृष्ण और प्रकृति, इन दोनों के बीच का हो जाता है। हमको क्या करना है, लेकिन तो इसलिए नाम रुचि चाहिए, नाम रुचि होना बहुत आवश्यक है। पुमांश्चरति निस्पृह, दूसरा लाइन है, पुमांश्चरति निस्पृह, पुरुष इच्छा रहित होकर आचरण करता है। ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भक्त है, शांति चाहता है, जिसको शांति प्राप्त होती है, वो क्या होता है, इच्छा रहित होकर आचरण करता है। तो अर्थात इच्छा रहित होना अर्थात क्या, अभी हमने क्या कहा, कैसे, हाँ, इच्छा रहित होना अर्थात कृष्ण की इच्छा करना। इच्छा रहित होने का अर्थ है कृष्ण की इच्छा करना। वैराग्य का, इसलिए वैराग्य का अर्थ है कृष्ण प्राप्ति की इच्छा करना, अर्थात वैराग्य। वैराग्य का अर्थ हिमालय में जाके एक पैर पे खड़ा रहना, सर नीचे पैर ऊपर करना, पूरे शरीर पे वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ नहीं वो आता है ना, एंट हिल, क्या बोलते हैं एंट हिल को गुजराती में, फाफड़ा माफड़ा कुछ ऐसा ही बोलते हैं, एंट हिल गुजराती में क्या बोलते हैं, एंट हिल को राफड़ा लाफड़ा राफड़ा कुछ ऐसे ही बोलते हैं। तो वो राफड़ा ऊपर तक आने तक तपस्या करना, ये वैराग्य की, कलयुग में इसको वैराग्य नहीं। वैराग्य क्या है, कृष्ण को पाना, कृष्ण की इच्छा करना। कृष्ण की इच्छा करने से अपने आप भौतिक इच्छाओं रहित हो जाते हैं, वो काम कृष्ण का है, हम नहीं कर सकते। तो कृष्ण सेवा में जब इच्छाओं को लगाते हैं तो हम सारी इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। अर्थात वो क्या करते हैं, कृष्ण भगवान हमारी इच्छाओं को करेक्ट करते हैं, रॉन्ग को राइट करते हैं, गलत इच्छा को राइट इच्छा कर देते हैं। जस्ट टर्न अराउंड, इच्छा रहेगी लेकिन उसको टर्न कर देते हैं। यदि हम कृष्ण में मन लगाते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। यहाँ पे विशेषकर कहा है चरति, इस शब्द का अर्थ क्या है चरति, इसमें लिखा है पुमांस चरति निस्पृह, चरति इस शब्द का अर्थ है चरति अर्थात संदेशवाहक, संदेशवाहक अर्थात भगवान कृष्ण के जो उपदेश है उसका वहन करने वाले। भक्त इस संसार में जीवित ही इसलिए है क्योंकि वो कृष्ण के उपदेशों का संदेश पहुंचाते हैं, अर्थात कृष्ण उपदेश को पहुंचाने के लिए ही भक्त जीवित है इस संसार में। अदरवाइज क्या पर्पज है जीवित रहने का, इस संसार में रहने का पर्पज क्या है, हेतु क्या है? केवल कृष्ण का उपदेश सारे जीवात्माओं तक पहुंचाना, यही उद्देश्य है। हरिद्वार में जब विदुर जी मैत्रेय मुनि को मिले तो मैत्रेय मुनि को श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में है क्या कहते हैं विदुर जी, जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवा धर्माशीलस्य सुदुखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति, इसमें भी चरन्ति है, अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, अर्थात महान परोपकारी व्यक्ति पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर दया दिखाने के लिए विचरण करते हैं। जो महात्मा लोग हैं वो पृथ्वी पे विचरण इसलिए करते हैं कि ऐसे पतित लोगों के ऊपर वो दया दिखाते हैं। कौन सी दया दिखाते हैं और वो लोग पतित क्यों है? एक तो वो लोग श्री कृष्ण से विमुख है इसलिए पतित है। तो पतित कौन होता है? जो श्री कृष्ण से विमुख होता है, सन्मुख नहीं विमुख, कृष्ण के पीछे रहता है, पीठ के पीछे, सामने ही नहीं आता है। जो कृष्ण के पीछे रहता है वो विमुख रहता है, कृष्ण श्री कृष्ण विमुख, वो कौन होता है? पतित होता है। पाप किस, कोई तो जन्म के ऐसे बुरे कर्म है, ऐसा कुछ पाप चढ़ा हुआ है कि जो कृष्ण भक्ति में आने नहीं दे रहा है, इसलिए कोई कर्म लगा हुआ है। परंतु ये जो भक्त है विदुर जी कहते हैं, ये महान परोपकारी महात्माएं जो होते हैं ये क्या करते हैं, ऐसे ही जीवों को कृष्ण का उपदेश समझाते हैं, सुनाते हैं और उनके ऊपर कृपा करते हैं, और इसीलिए वो चरंती विचरण करते रहते, संदेश वाहक का काम करते हैं। पुमांस चरति अर्थात इच्छा रहित होकर विचरण करते हैं। अब इच्छा रहित होना अर्थात क्या? कृष्ण की इच्छा रखना। तो कृष्ण की इच्छा मन में लेकर ये महान व्यक्ति परोपकार करते रहते हैं और दूसरों को, पतितों को, पतितों का उद्धार करते रहते हैं। ऐसे ये भक्त होते हैं जो इच्छा रहित रहते हैं। अर्जुन के 54 में जो प्रश्न किए थे कैसे रहते हैं, तो इस प्रकार से उनका स्वभाव रहता है, वो विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। किस लिए? इच्छा रहित होकर घूमते। इच्छा रहित होना अर्थात कृष्ण की इच्छा रखना, कृष्ण की इच्छा को लेकर घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, पतितों को कृष्ण का संदेश पहुंचाते हैं। उदाहरण है श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसमें कहा है पुमांस चरति निस्पृह, निस्पृह का अर्थ होता है इच्छा न होना या द्वेष न होना, निस्पृह। अब ये जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति होता है, जो कृष्ण भक्त होता है, वो एक बात अच्छी तरह से जानता है। क्या जानता है बोलिए? कृष्ण भक्त अर्थात वो क्या समझता है? कृष्ण कॉन्शियस अर्थात व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियस? अभी एक वाक्य में बोलिए, दो बार तो हो गया। हाँ, सब कुछ श्री कृष्ण का है ऐसा समझना, ये बात ध्यान में रखिए, उसी को कृष्ण भक्त कहते हैं। सब कुछ कृष्ण का है, यह जो समझता है वो कृष्ण भावना भावित है, सब कुछ कृष्ण का है, मैं भी स्वयं अर्थात मैं अर्थात हम सब कृष्ण का है। तो यहां कहते निस्पृह, क्योंकि वो ये जानता है कि भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, सारे चीजों के भोक्ता कौन है, भगवान कृष्ण है, हा? यह वो जानता है, इसलिए उसके अंदर उनके साथ कंपटीशन करने की इच्छा ही नहीं होती। उनके साथ कंपटीशन अर्थात ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, इस प्रकार से उसके अंदर वो इच्छा नहीं होती, अर्थात उसके अंदर कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा होती है, इसलिए दूसरे वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। और इस देखो कृष्ण भगवान है और कृष्ण का सब सब कुछ कृष्ण का है, तो भोक्तारम यज्ञ तपसा, अब द्वेष इस व्यक्ति को नहीं रहता है, अर्थात उसका इस बात में पूर्ण विश्वास रहता है, वो ये प्रश्न कभी नहीं पूछता है कि श्री कृष्ण क्यों भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसा, तो ये प्रश्न कभी वो नहीं, उसके मन में संशय आता नहीं है, संदेह नहीं आता है कि कृष्ण क्यों भोक्ता है और मैं क्यों भोक्ता नहीं हूं, हाँ सब भोगने वाले कृष्ण क्यों है और मैं क्यों भोग नहीं सकता, यह विचार उसके मन में कभी नहीं आता है। इसलिए यहां का है निस्पृह, इस प्रकार से स्पृहा उसके अंदर नहीं रहती, हमारे अंदर कभी कभी हो सकती है, कृष्ण ही भोगता है सब, हम क्यों नहीं, एक हद बात हम भी भोग ले वे? है कि नहीं, हा? हम भी भोगना चाहते हैं ऐसा, परंतु यह द्वेष भाव उसके अंदर नहीं होता है, निस्पृह रहता है, वो 100% जानता है कृष्ण ही भोगता है। फिर निर्ममो निरहंकारो, इसमें आगे क्या आता है, निर्मम अर्थात निर्मम अर्थात उसको आसक्ति नहीं रहती है और अहंकार को त्याग दिया हो। ईशोपनिषद का श्लोक है, प्रथम श्लोक क्या है, ईशावास्यम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम, तो उपास जी इसका कई बार रेफरेंस देते हैं, तात्पर्य में भी कहते हैं ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंचित जगतो जगत, हाँ? सब जगत सब कुछ ये को किसका है, ईश्वर का, इस सृष्टि में जो कुछ है उस पर कृष्ण का ही अधिकार है, उनके द्वारा जो हमको प्राप्त हुआ होता है उसका बड़े आनंद से हम स्वीकार करते हैं और उसी में आनंद मानते हैं और बाकी सारी अधिकार और सारी बातों को हम त्याग देते हैं या उसके प्रति आसक्त नहीं रहते या हमको अहंकार नहीं। जो कृष्ण ने दिया है वो कृष्ण का प्रसाद है, कृपा है, हमको उसके प्रति अहंकार नहीं रहता। अहंकार भी दो प्रकार के होते हैं, एक अहंकार जो है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, सब कुछ मेरा है, मैंने लाया है, मैं, और दूसरा अहंकार मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का सेवक, एक मिथ्या अहंकार है और एक शुद्ध अहंकार है। तो अहंकार से तो हमको दूर ही रहना है, जैसे एक्टर होता है, सिनेमा एक्टर होता है ना, बराबर है, सिनेमा एक्टर स्टेज पे शूटिंग करता है, स्टेज पे एक्टिंग करता है, मान लो वो इंद्र का रोल कर रहा है, बहुत बड़े इंद्र का वो रोल कर रहा है, देव का, कोई देव का रोल कर रहा है, वो स्टेज पे आ गया और अब वो इंद्र बन गया, तो वास्तव में वो इंद्र के रूप में आ गया तो उसके अंदर अहंकार हो जाए, अब तो मैं इंद्र हूं। अभी शिव जी का सीरियल चल रहा है ना, कोई पोस्टर दिखते सब जगह, वो जो एक्टर है जो शिव जी का एक्टिंग कर रहा है, तो जब वो एक्टिंग करता है तो वो हो जाता है शिव जी, और फिर वो अनेक राक्षसों से युद्ध करता है। परंतु जब वो एक्टिंग करता है, देखिए ध्यान से, जब वो शिव जी की एक्टिंग करता है, जिस समय वो एक्टिंग कर रहा है उस समय उसको एक बात निश्चित तौर पे याद है, स्मरण में है कि वो शिव जी नहीं है। उसका मूल रूप क्या है? उसका मूल रूप एक्स वाई जेड एक्टर है, उसका नाम हमको मालूम नहीं। वो एक्स वाई जेड एक्टर है, वो मूल रूप एक मनुष्य है, परंतु स्टेज पे आ गया है तो एक्टिंग कर रहा है, और एक्टिंग करते वक्त अपने मूल रूप को नहीं भूल रहा है। मान लो यदि भूल गया तो क्या होगा? अपने मूल रूप को भूल गया कि मैं एक्टर और शिवजी बन के बैठा और आ गया, समझो लोकल ट्रेन में, राइट सरक जाओ मुझे बैठना है, क्या करेंगे लोग? क्या होगा? नुकसान हो जाएगा उसका। बहुत कम ट्रेन में लोकल में आ गया, उसको उनको दिखाना पड़ता है भगवान है तो दिखाओ करके कुछ। यदि वो भूल गया, उसका मूल रूप यदि भूल गया और सोचा कि अब मैं कैलाश ही मेरा निवास है और कैलाश सरोवर पहुंच गया, कैलाश के लिए जाने के लिए निकल पड़ा, तो जा पाएगा? वहां रह पाएगा? परंतु वो एक्टर है और उसका मूल रूप जो है, मूल वो एक मनुष्य है, ये वो नित्य जानता है, एक्टिंग करते वक्त भी जानता है। तो ये संसार जो है ना, भौतिक प्रकृति, ये एक स्टेज है, ये एक स्टेज है, यहां पर हम आए हैं यहां पे एक्टिंग करने के लिए, ये परमानेंट थोड़ी है हमारा घर। ओरिजिनली हम क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास। मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? कृष्ण दास। और मैं कर क्या रहा हूं? स्टेज पे एक्टिंग, एक्टिंग करते करते मैं भूल जाता हूं मैं कृष्ण का दास हूं, और मैं क्या कर बन बैठता हूं? माया का दास बन जाता हूं और एक्टिंग में इन्वॉल्व हो जाता हूं। कितने दिन चलेगा एक्टिंग? अल्टीमेटली वो तो एक्टिंग ही है। कहीं ना कहीं तो फंस जाएंगे। तो ये एक्टिंग से हमको अहंकार आ जाता है। बताओ, हम बोलते हैं हम तो बहुत बढ़िया एक्टर हैं, हम तो बहुत बढ़िया धनी हैं, हमारे पास तो बहुत बड़ी डिग्री है, हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। अरे भाई, पर ये एक्टिंग है सब। ओरिजिनली तू दास है, दास कृष्ण का, परंतु वो भूल जाते हैं और एक्टिंग के ऊपर हमको अहंकार हो जाता है। तो ये तो बहुत गलत बात है। है कि नहीं? यह सही नहीं है। सही क्या है? हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसको नित्य स्मरण में रहे। यदि हमारा वो स्मरण नित्य रहेगा तो हमको निर्ममो निरहंकारो, इसमें जो कहा गया निर्ममो निरहंकारो ईशावास्य इदम सर्वम, ईशोपनिषद कहता है सब कुछ जो है ईश्वर भगवान का है। ये प्रकृति भगवान, मैं तो केवल एक्टिंग करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, कुछ दिन की एक्टिंग करूंगा, मेरे रूप को, मूल रूप को प्राप्त करूंगा, उसी में तो वास्तविक आनंद है। एक्टिंग इज नॉट रियल। वो रियल होता है जो एक्टिंग करते, एक्टर लोग शूटिंग करते, वो सही वास्तव में होता है? वो नहीं होता है। तो वो जो वास्तविक नहीं है उसमें आनंद भी नहीं होता है, जो वास्तविक होता है उसमें आनंद होता है। और वास्तविक वह जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। और फिर आखिरी लास्ट पंक्ति में कहा है स शांतिम अधिगच्छति, शांति अर्थात जहां पर जीवन मृत्यु का चक्र शांत हो जाता है उसको कहते हैं शांति। जीवन मृत्यु का चक्र जहां शांत हो जाता है उसको कहते हैं शांति। चक्र चक्र में पड़े नहीं रहते हैं। तो यहां कहते अधिगच्छति, स शांतिम अधिगच्छति, अधिगच्छति अर्थात अधिकृत रूप से पहुंचना। इन शॉर्ट सारांश यह है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करके व्यक्ति को कृष्ण चरण की सेवा का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अर्थात भगवान की कृष्ण की इच्छा रखने से और कृष्ण की सेवा करते रहने से श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। यू हैव अ राइट, आप कृष्ण को बोल सकते हैं कि मुझे अधिकार है आपको प्राप्त करने का, आपके प्रेम को प्राप्त करने का। आई हैव सर्टिफिकेट, ये देखो मेरे पास सर्टिफिकेट है, राइट है। लेकिन कब बोल सकते हैं? उनके प्रति हृदय में इच्छा रखिए और सेवा कीजिए, इसी को कहते कृष्ण कॉन्शियस। इच्छा रखना अर्थात सब कुछ कृष्ण का है यह इच्छा रखना और उस अनुसार सेवा करना, है ना। इस यह करने से आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा, अथॉरिटी, यू विल बी ऑथोराइज्ड पर्सन। आप ऑथोराइज्ड पर्सन हो जाएंगे। जैसे कोई कंपनी में काम करते हैं तो उनका वो रहता है आई कार्ड लेके घूमते लोग, यहाँ वहाँ फलाना ठिकाना, बड़ी कंपनी है तो और बड़ा लगा के या बड़ी पोजीशन है तो और बड़ा डेकोरेट करके उसको अच्छा बैंड वगैरह लगा के। और यदि हम कृष्ण के अधिकृत सेवक हो गए, कृष्ण की सेवा करने का अधिकार हमको यदि प्राप्त हो गया तो कौन सा बैंड मिलता है? सबसे पावरफुल बैंड, सबसे पावरफुल बैंड कौन सा? जिह्वा पे कृष्ण नाम और कंठ पे कंठी। ये बहुत पावरफुल बैंड है, आई कार्ड, वेरी पावरफुल। तीनों लोगों में इसका रिकग्निशन है, किधर भी जाओ, ऊपर स्वर्ग में, नीचे ऊपर किधर पाताल में, सुतल अतल तड़ातल जे का है, किधर भी जाइए इसका आइडेंटिफिकेशन है। तो इसलिए वो आई कार्ड सब रखिए पास में, बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न है? एक प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, पर वो जो कुछ वक्त तक जो होता है ना हाँ, तो कुछ वक्त तक जो होता है ना, वो जो एक बार हो गया ना, तो रोज वैसे ही होने का, वही प्राप्त, वही अनुभव प्राप्त करने का प्रयास। हाँ, गड़बड़ी तो रहेगी ना, क्योंकि हम गड़बड़ वाली जगत में आए हैं तो इधर गड़बड़ी रहेगी। लेकिन यदि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और मन को कहेंगे कि अरे कल जो थोड़ी देर के थोड़े समय के लिए जो अनुभव हुआ, हे मूर्ख मन, आज फिर आज मुझे वो अनुभव चाहिए, शांत बैठ, तो ये तो प्रैक्टिस से होगा। उसकी कोई सुपर कैप्सूल नहीं, गोली खा ली कि बैठ गए, ऐसा नहीं होता। उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना सीरियसली, जितना गंभीरता से, जितने हम गंभीर होके वो प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी वो फास्ट रिजल्ट आएगा। तो प्रैक्टिस करना होगा। नहीं, वो तो होती रहेगी, गड़बड़ी तो होती रहती है, परंतु हमारी गंभीरता को बढ़ाइए। गड़बड़ी क्यों होती है? क्योंकि हमारी गंभीरता में कमी है। हम जब जो जब कर रहे हैं उसमें गंभीर नहीं हो पा रहे हैं, वो गंभीरता में थोड़ी बहुत कमी है। तो गंभीरता कैसे बढ़ेगी? तो थोड़ा थोड़ा रोज श्रवण करते जाइए। श्रवण भले 15 मिनट श्रवण कीजिए, लेकिन पूरे ध्यान से, अटेंटिवली ध्यान से सुनेंगे तभी जाके हम गंभीर हो पाएंगे, नहीं तो हमारी गंभीरता नहीं आएगी। और गंभीरता नहीं होगी तो चंचल रहेगा मन, जब करते थोड़ी देर गंभीर, थोड़ी देर ऐसा, थोड़ी देर वैसा। थोड़ी गंभीरता बढ़ाइए। जैसे कोई बहुत ही महत्व का काम करते हैं तो कितने गंभीर रहते हैं, जरा भी गलत नहीं होना चाहिए बोलते। मान लो कोई चेक बैंक में डिपॉजिट करना है, कैश बैंक में डिपॉजिट करना है आपके अकाउंट में, आपको कितने ध्यान से लिखते हैं वो फॉर्म, एक भी रुपया कम नहीं लिखते जाना चाहिए, है ना। बहुत ध्यान से लिखते हैं ना, बहुत ही ध्यान से लिखते हैं। उतनी गंभीरता जब करते वक्त मुझे एकदम गंभीरता से, जरा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, जरा भी यहां वहां मन नहीं जाना चाहिए, थोड़ी गंभीरता। गंभीरता से वो प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छा अच्छा अनुभव आएगा और बहुत समय तक अनुभव आएगा। लेकिन वो जो पहले अनुभव आया उसका स्मरण करते रहिए, है ना।
हरे कृष्ण।